ங்கேன தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நம. வஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ய கிருபாசிந்துப்யேவ ச பதிதானம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நம. நமோ மகாவதன்னாய கிருஷ்ண பிரேம ப்ரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌரத்விஷே நம. குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்பக்தாய நமோ. தவை வாஸ்மி நஜுவாமி த்வயா வினா இதி விக்ஞாய ராதே தங்கே. मैं सबसे प्रथम अपने परमाराध्यतम नित्य लीला प्रभुष्टोंग विष्णुपाशी श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूं। परमादरणीय त्रिदंडीपादगण, ब्रह्मचारीगण, वैष्णव वैष्णवी एंड सज्जन मंडली, श्रावण का महीना है, रिमझिम वर्षा हो रही, वृंदावन है, चारों तरफ हरियाली है, जमुना नदी भरी हुई है और उस हरियाली में कभी कभी मेघ गर्जन होता है, उस समय मयूर मयूरी के का के की सबका करके नृत्य करने लगते हैं अपने पंखों को फैलाकर। जमुना के दोनों तरफ में बेली चमेली जूई विशेष करके वृंदा देवी के वृक्ष खूब सुंदर रूप में विकसित हो रहे हैं, अद्भुत वृंदावन का दृश्य है, अद्भुत। गोलोक वृंदावन से यहां आया है, पृथ्वी पर और कहीं संभव नहीं। वृंदावन में वृंदावन की ब्रज की लड़कियां अपने ससुराल से सभी श्रावण में आई हैं अपने पिताजी के घर पर। झूले चारों तरफ लगे हुए हैं, चारों तरफ कुंजों में वृंदावन को उस समय का जैसा देखिए, चारों तरफ में सघन कुंज हैं, कदंब की डार पर झूले लगे हैं, सखियां झूला रही हैं, मल्ला राग गा रही हैं, उमड़ घुमड़ कर बादल नीचे झुक रहे हैं। झूले के समीप कृष्ण आए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं और राधिका जी निकट आकर के उनको निकट आने पर भी मान हो गया। जितना झूला निकट आने लगा मान भी उनका बढ़ने लग गया। ललिता विशाखा इत्यादि उनको समझा रही हैं, सखी मान ना करो, क्या है ऐसो मान ना करो, हट छाड़ो रे यार, वो तो पीछे लौट करके जा रही हैं और सखियों ने पकड़ लिया, ऐसा मान मत करो, हठीली गर्बीली। इसका नतीजा क्या होगा जानती हो? सब पक्ष की गोपियां विशेष करके चंद्रावली इत्यादि कृष्ण की ताक में है, झपक मारते ही, पलक मारते ही कृष्ण को लेकर के अपने झूले में बैठा करके झूलेंगे, तुम ताकती रह जाओगे। इसलिए ऐसा मान न करो, हट छाड़ो री अली सखी, ऐसा मान मत करो। और दिनों में ललिता जी कहते हैं कि मान करो, क्या है धुरते बजेंद्र तने तन सुष्ट बाम्यम, मां दक्षिणा भव कलंकी नीला, मां दक्षिणा दक्षिणी भव। कभी कृष्ण के आगे झुकना मत, मान ठीक रखना। पर जैसे मुझसे उनको देखते ही मान अपने आप दूर हो जाता, खबरदार। कहते हैं जैसे जब भी कृष्ण को मैं देखती हूं हमारा मान अब रह ही नहीं जाता, तो भी रखो। और आज उनको बुला रहे हैं, बादल झुक आए हैं, रिमझिम वर्षा हो रही है, तुम्हारे प्रियतम आंखों के पलके पावड़े तुम्हारे लिए बिछा रहे हैं, जहां 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 तुम्हारे पैर पड़ते हैं वहां पर श्याम के क्या पड़ते हैं। और ऐसे सुंदर सरस मधुर कृष्ण को के प्रति तू मान करके नहीं आ रही, इन्हें छोड़ो मान। ये लीला को हमारे कवि कर्णपुर जीव गोस्वामी इत्यादि रसिक भक्तों ने आनंदवन वृंदावन चंपू इत्यादि में इसका वर्णन किया है। दो तीन ऐसी लीलाएं हैं जिनमें कृष्ण की मनोभीष्ट अपने आप पूर्ति हो जाती, जो चाहते हैं वो सब कुछ हो जाता है। और ऐसे कृष्ण मचल करके रह जाए, उनकी इच्छा पूर्ति नहीं। एक होता है नौ का विलास, अपने आप पकड़ लेती है। इस राधा जी को स्पर्श करने में बड़ा कठिन है, उनको स्पर्श करना, और वो अपने आप पकड़ लेती हैं, जबकि नौका डूबने लगती है और ऐसे हिलने लगती। और एक लीला ये है, सखियां झुला रही हैं, बारी बारी से कृष्ण कभी ललिता विशाखा इत्यादि को झुला रहे कृष्ण, और कभी राधिका जी। झूले में कुछ ऐसा होता है, दो तरफ से भी होता है, एक तरफ से भी होता है। एक तरफ से सामने से राधिका जी, दूसरे तरफ से कृष्ण बैठते हैं। और जब झूला चलता है ऐसा झूलाते हैं पैरों के जोर से, जो झूला इधर से ऊपर एकदम पहुंच जाता है और इधर से संभाल नहीं पाती, कपड़े भी उड़ने लगते हैं, और डर के मारे उस समय में झट कृष्ण को पकड़। ये सब लीलाओं का हमारे रसिक वैष्णव ने इसका बहुत वर्णन किया है। तो आज वो गोलोक वृंदावन का यह झूला इस श्रावण के महीने में इस वृंदावन में, और जगह झूले होते हैं किंतु ब्रज का झूला बहुत प्रसिद्ध है, विशेष करके ये वृंदावन में बरसाने में रावल में और सब स्थान में घर घर में झूले पड़े और झूले के कीर्तन सब होते हैं। कल से हम लोगों के संप्रदाय के प्रधान स्तंभ श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट पूर्ण करने वाले श्री रूप गोस्वामी जी की हम तीन दिन के उत्सव के लिए विरह उत्सव मनाएंगे। वृंदावन के मथुरा के मूर्धन्य बड़े बड़े विद्वान लोग आएंगे और राधिका श्री रूप गोस्वामी के वैशिष्ट्यों को वे वर्णन करेंगे। आप लोग सभी लोग आएंगे। कल सवेरे हम लोग करीब 6:30-7 मथुरा से भी आने वाले
हैं।
साढ़े छह बजे, साढ़े छह बजे के पहले आप लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ से कीर्तन के साथ में हम लोग श्री रूप गोस्वामी के राधा दामोदर जप मंदिर में जाएंगे। वहां रूप गोस्वामी की भजन कुटी और समाधि पर हम लोग बैठ करके वहां पर पहले पुष्पांजलि देंगे और श्रीमती श्री रूप गोस्वामी के संक्षेप में कुछ हम वर्णन करेंगे हम लोग और कीर्तन करेंगे। उसके बाद में कुछ देर के बाद में फिर हम लोग यहाँ आएंगे। 9 बजे से कीर्तन हम लोग आरंभ करेंगे, 9:30 और सब वैष्णव लोग भी आएंगे और उनकी महिमा का कीर्तन यहाँ पर फिर होगा। दोपहर में श्री रूप गोस्वामी के लिए विशेष प्रसाद निवेदन होगा और प्रसाद हम लोग सभी लोग वितरण करेंगे और फिर शाम को कै बजे सभा बैठेगी,
5 बजे का समय दिया है।
पहले शुरू करना पड़ेगा।
हाँ तो 5 बजे कृष्णदास जी और सब लोग बैठ जाएंगे, कीर्तन करेंगे और कै बजे 6 बजे के करीब में हम
5 बजे आएंगे
और मैं यहाँ पर कब आऊंगा?
5 बजे
5 बजे तो बहुत
दिन,
5:30 और सब लोग भी आए और सब विद्वानों को भी लाना है और करीब करीब 7:15 तक हम लोगों की सभा चलेगी 3 दिन रूप गोस्वामी के संबंध में। आप सभी लोग वहाँ में आएंगे और खूब ध्यान से सुनेंगे। चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट पूर्ण करने वाले श्री रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी का बहुत वैशिष्ट है। यदि वे नहीं आते तो श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा जगत में जो प्रचारित हुई है वो नहीं होती। जैसे श्रील प्रभुपाद नहीं आते श्रील सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी पाद, तो भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि की महिमा सब दबी रह जाती, कोई नहीं जानती। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, राधा भाव दूत सुबलित कृष्ण स्वरूप हैं, ये कौन जानता जगत। प्रेम महानिधि की कोठरी को उसके कपाट को कौन उघाड़ता। यदि रूप गोस्वामी नहीं आते, विशेष करके श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट उन्नत उज्ज्वल पारकीय भाव था, इसकी जगत में कौन स्थापना करता शास्त्रीय प्रमाणों के बल पर और भागवत के बल पर। लोग इसको घृणा करते थे, स्वकीय को श्रेष्ठ मानते थे। यहां तक कि श्री संप्रदाय और दूसरे संप्रदाय वालों ने गोविंद जी के मंदिर से राधा जी को हटा दिया, राधा जी के साथ में उनका विवाह नहीं है, वो मंदिर के अंदर में उनकी पूजा नहीं हो सकती। तो उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी थे, सब समय भावाविष्ट में रहते थे, उनको शरीर का होश नहीं रहता उस समय, अंतर्बाज्य दशा में उनको होश में लाकर के बतलाया गया। उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को अपने एक शिष्य कृष्णदास को वहां पर भेजा, जयपुर में विचार हुआ और सबको परास्त करके गोविंद भाष्य को लिखकर संप्रदाय को मान्यता मिली और फिर राधा जी को बैठाया गया। सभी लोग घृणा करते हैं उपपत्ति भाव को, इसलिए हमारे प्रारंभिक जो बड़े बड़े भरत इत्यादि जो अलंकारिक लोग हो गए हैं, उन्होंने नौ रस ही माना, बारह रस नहीं माना, मधुर रस को नहीं लिया, किंतु चैतन्य महाप्रभु के अभीष्ट को पूर्ण करने वाले श्री डोरुप गोस्वामी ने क्या किया। समस्त शास्त्रों के तो उदाहरण लिए ही, विशेष करके भागवत के, पति सुतान्वय भ्रातृपान भवान अति विलंघते अंत अच्युतागता गति विदस्त कवो जीत मोहिता पितव जोषित कस्तव्य। जितने श्रीमद भागवत के प्रसिद्ध श्लोक हैं, न पारे हम निर्बद्ध संजू जाने इत्यादि, सब पार की अरस के ये विचार के हैं, किसी के से तर्क नहीं किया, बस शास्त्रिक प्रमाण दे करके और उसकी स्थापना की, और उसी का फल है कि संप्रदाय के लोग और दूसरे संप्रदाय के लिए बाध्य होकर के इस संप्रदाय के औपपत्य भाव को प्रणाम करते हैं। मैं तो समझता हूं कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ ही उन्नत उज्जवल पारकीय भाव का परिपोषक ग्रंथ है, इसलिए आप लोग श्रील रूप गोस्वामी के विचारों को ग्रहण करें। हम लोग ये जो सभा कर रहे हैं, सभा का दूसरा कोई तात्पर्य नहीं है, खिलाने पिलाने के लिए उत्साह नहीं कर रहे, इन गूढ़ विचारों को देने के लिए यदि हजारों में से कोई एक व्यक्ति भी इस विचार को ग्रहण किया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। रूप गोस्वामी ने साधारण लोगों के लिए भक्ति के लिए भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिखा, किंतु उज्ज्वल नीलमणि किसके लिए, अत्यंत दुरूह ये भाव है, दुरूह सबके लिए, यहां तक कि दास्य सख्य बात्सल्य और सब रसों के लिए अनुपयोगी है, अनुपयोगी है। और तीसरी बात, जो इस भाव से भजन करना चाहते हैं मधुर भाव से, उनका कोई संस्कार नहीं होने से चिंतन नहीं कर सकते, इसलिए तीन कारणों से उन्होंने उज्ज्वल नीलमणि लिखा। और विशेष करके श्री अजीत गोस्वामी और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इसकी टीका की और उसके दुरूह भावों को यदि कोई पढ़े तो उसका संस्कार होगा, और यदि वैसा गुरु मिल गया रसिक भाव, इस जन्म का संस्कार पूर्व जन्म का संस्कार किसी प्रकार से उदित हो गया तो फिर इस रस में प्रवेश हो सकता है। इसलिए बहुत से लोग चाहने पर भी भाई नहीं होगा, ऐसा संस्कार होगा कैसे, ऐसे गुरु और वैष्णव हो तो इसका संस्कार हो सकता, अन्यथा संस्कार होना बड़ा कठिन है। कोटिस्वपि महामुने, कोटि कोटि लोगों में से किसी एक बिरले को यह भाव हो सकता है। कृष्ण भक्त ही दुर्लभ है, और कृष्ण भक्त में से कोई सख का कोई वात्सल्य का भी बहुत कठिन, और उनमें भी करोड़ों में से कोई एक इसका। इसलिए हम लोगों ने सब आप लोगों को निमंत्रण किया है, कल प्रसाद का उत्सव खूब होगा, रसगुल्ले आएंगे, रसमलाई आएगी, और क्या क्या चीज होगी, भोग लगेगा, आकंठ पान करेंगे, हाँ ये तो होगा ही, किंतु इतने लोगों में से आने वालों में से दो एक को भी यदि इसका संस्कार आ जाए, रूप गोस्वामी को के विचारों को ग्रहण करने की, बस जीवन सार्थक हो गया। इसलिए हम जगत में प्रचार कर रहे हैं। हमारा प्रचार का कुछ ढंग निराला है। वैदिक भक्ति का तो प्रचार सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग। मैं रूपानुग का जो भक्ति है उसका वैधि भी रगानुगा है। जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया है ना कि परम करुण कृष्ण रसिक शेखर, यही दुई हेतु हैते लीला इच्छा रूपम, राजमार्ग लोके करते प्रचारण, निजास का साधन ये कृष्ण के लिए और राजमार्ग का प्रचार किन के लिए, भक्तों के, जिनके वैसे संस्कार हैं उनके लिए राग मार्ग का प्रचार। पहले समझो जे राग क्या है, तब फिर राग अनुगा है। महाप्रभु का विशेष यह काम था और रूप गोस्वामी ने उनके इस मनोभीष्ट को पूर्ण किया। तो जो बड़े बड़े सौभाग्यवान होंगे वो इस चीज को समझने की चेष्टा करेंगे, रूप गोस्वामी आए किस लिए, किस लिए। इसलिए मैं विष्णु में घूमता हूं, प्रहलाद महाराज का चरित्र और सब वर्णन करता हूं, चित्रकेतु महाराज का उपाख्यान और श्रीमद भागवत में नौवें स्कंध तक जो है उसका भी वर्णन करता हूं, किंतु किसी न किसी रूप से राग मार्ग के संबंध में थोड़ा कुछ जरूर बतलाता हूं जो लोगों की धर्म में रुचि हो जाए। तो ये सब हम लोग कल से आरंभ करेंगे। आप लोग सब कामों को छोड़ करके भी यहां पर आएंगे और समझने की इच्छा करेंगे और ग्रहण करके लेकर के जाएंगे। गौ प्रेमानंदे।